सभी के समक्ष मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय गीता दीदी जी। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका जीवन है। आपने साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में बोर्ड प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया और 1972 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आपने 14 वर्ष तक भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में रहकर गुजरात के अन्य स्थानों पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की। 1993 से आपने ज्ञान सरोवर एकेडमी में इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में नियमित रूप से अपनी विशेष सेवाएं प्रदान की। सन 1985 में भारत एकता युवा पद यात्रा का नेतृत्व भी आपने ही किया और 1992 में आयोजित इंडो नेपाल अवेयरनेस कैंपेन में भी आपने भाग लिया। आप एक कुशल राजयोग एवं स्व प्रबंधन प्रशिक्षक भी हैं और बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर को ऑर्डिनेटर भी हैं। तो ऐसी विशेष हस्ती के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हर लक्ष्य में आपने समंदर को छुपा रखा है, अपने जमी तो जमी इन आंखों में अंबर को छुपा रखा है, अपने सुरूर में बहारों को सजा रखा है, आपकी खुशबू ने दिशाओं को महका रखा है, आपके शब्दों की कीमत कोई लगा नहीं सकता, उसे तो हमने इस दिल में छुपा रखा है, इस दिल में छुपा रखा है। तो करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत है, स्वागत है। आज का आपका विषय है कि कैसे परम कलाकार के साथ हम अपने सर्व संबंधों को जोड़ें।
ओम शांति। आज के सत्र में राजयोग की विधि के बारे में हम समझेंगे। प्रैक्टिकली इस योग का अभ्यास हमें कैसे करना है। अब तक भक्ति मार्ग में भगवान से मन लगाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकांड करते रहे हैं, कई प्रकार के साधनों का आधार लेते रहे हैं, कई प्रकार के शारीरिक औपचारिक क्रियाएं करते रहे हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जो सहज योग सिखाते हैं वो कितना नेचुरल और इजी है वो आज हम समझेंगे। राजयोग शब्द ही सिद्ध करता है कि जो सर्व योगों का राजा है, सर्वश्रेष्ठ योग है, इसलिए कि इस योग का आदि शिक्षक स्वयं परमात्मा है। योग का आधार आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान है और आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए यथार्थ योग केवल तभी संभव है जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। इसलिए स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सभी आत्माओं को जो योग सिखाया है उसकी प्रैक्टिकल विधि अब हम समझेंगे। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए हम हरेक अपने जीवन को पवित्र और योगी बना सकते हैं, कर्मेंद्रियों के राजा बन सकते हैं। हम अपने अंदर दैवी मैनर्स को धारण कर सकते हैं और जीवन के अनेक राज हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो राजयोग का आधार जिन दो मूल सत्य पर है वो दोनों ही मूल सत्यों के बारे में कल सुबह एक और कल शाम को एक, ऐसे दोनों सत्र कल हो चुके हैं। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन हैं और जिससे योग लगाना है वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा कौन है, इन दोनों विषयों पर आपके क्लास हो चुके हैं। अगर आप सभी ने ये दोनों सत्र बिल्कुल ध्यान से अटेंड किए हैं तो आपको स्पष्ट है कि आप स्वयं कौन हैं और पिता परमात्मा कौन है। योग अभ्यास करने वाली हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है और जिससे योग लगाना है वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा है। न हम भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक है, न हम कोई प्राकृतिक शक्ति हैं, न परमात्मा कोई प्राकृतिक सत्ता है। इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति का व्यक्ति से संपर्क भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से हो सकता है, एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क अभी मेरे और आप सभी के बीच जो संपर्क हो रहा है वो ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से हो रहा है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और मैं बोलूं ही नहीं या ये साउंड सिस्टम काम ही न करे तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम एक दोस्त से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के द्वारा रिमोट कांटेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से संपर्क, बातचीत, मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता, केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। ये जो हमारी सूक्ष्म चैतन्य शक्तियां हैं, हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। अक्सर लोग योग के नाम पर आसन, प्राणायाम, देह दमन की हठ क्रियाएं करते रहते हैं। योग सीखते हैं माना लोग आसन, प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम की क्रियाएं सीखते रहते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों, वो फिजिकल योग है, फिजिकल हेल्थ के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। रोज आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए। लेकिन जहां तक आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने की बात है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की बात है, जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें कोई आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप योग अभ्यास करने बैठें, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना, शरीर से आप आराम से बैठिए, सोफा पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। आप जानते हैं कि कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन होती हैं कि माताएं, बहनें, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। यहाँ आप खुद अपने अनुभव को देखिए, यहाँ आप आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी एक घंटे के अंदर कितनी बार आपके पांव ऊपर नीचे होते होते हैं कि नहीं? अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि कब ये घंटा पूरा हो और ये आसन छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही आप बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं। और अब हमारे शरीर भी ऐसे कमजोर हो गए हैं कि हम एक सिंपल पलथी मार कर भी नहीं बैठ पाते, किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, हम एक सहज स्थिति में भी नहीं बैठ पाते। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि फिजिकली सुखासन में बैठे, आराम से बैठे। लेकिन जब भी आप योग अभ्यास करने बैठे, परमात्मा की याद के लिए बैठे, आधा घंटा बैठते हैं, एक घंटा, दो घंटा, जब भी आप बैठे, मन से अटेंटिव होकर बैठना है, मन से अलर्ट होकर बैठना है। अगर मन से भी आप आराम से बैठेंगे तो आप सो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। अभी भी आप देखो आसपास कोई सो तो नहीं रहा है, हाँ? देखिए, इसलिए मन से लक्ष्य पूर्वक बैठे, अटेंशन कि ये आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा मैं परमात्मा स्मृति के लिए बैठा, प्रभु चिंतन के लिए बैठा, परमात्मा से मनोमिलन मनाने के लिए बैठा, तो एम से बैठिए, लक्ष्य पूर्वक बैठिए। अपने आप को आप समझाइए कि जीवन की अन्य अनेक बातें सोचने के लिए, फिर वो घर गृहस्थी की बातें हैं, समाज संसार की बातें हैं, नौकरी धंधे की बातें हैं, शरीर की, परिवार की बातें हैं, ये सारी अनेक अनेक बातें सोचने के लिए हमारे पास बाकी के 22 घंटे हैं। आप ये लक्ष्य बना लीजिए कि रोज सुबह एक घंटा और शाम संध्या के समय एक घंटा परमात्मा मिलन के लिए है, प्रभु चिंतन के लिए। उस समय मुझे और बातें नहीं सोचनी, तो फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है। हो सकता है आजकल लोग आसन प्राणायाम सीखते हैं, आप में से भी कई हो सकते हैं घंटा दो घंटा कोई पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर स्थिर बैठ भी सकते होंगे। लेकिन आप सोचिए, शरीर से आसन लगाकर स्थिर बैठ गए, मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा स्मृति में मग्न नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर होकर बैठ गए, इससे क्या फायदा है? हमें मन परमात्मा में मग्न करना है, मन परमात्मा स्मृति में स्थिर करना। इसलिए परमात्मा हम सभी आत्माओं को यही कहते हैं कि शरीर ही एक विचित्र गुफा है, मस्तक के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही। अब और कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है मन और बुद्धि परमात्मा में आसन्न करने की, स्थित करने की। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। अब भाई बहने ये सोचते हैं कि राजयोग में हमें क्या करना है। क्या हम माला फेरें, मंत्र रटें, हम मुख से आरती भजन गाएं? राजयोग में हमें क्या करना है? भक्ति में हम भगवान से मन लगाने के लिए ये विभिन्न प्रयास करते रहे हैं, लेकिन राजयोग में न माला फेरनी है, न मंत्र रटना है और न ही इसमें मुख से कुछ भी गाना बजाना, आवाज नहीं करना है। आप अपने अनुभव को देख सकते हैं। भक्ति में हम माला फेरते रहे हैं लेकिन मन भी फिरता रहा है। हम हाथ से मणके फेरते हैं लेकिन मन भी फिरता रहता है, क्योंकि ये रटना जपना औपचारिक क्रियाएं हैं, नेचुरल नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं? फेरते हैं, महेश भाई महेश भाई महेश भाई, हम ऐसे उनके नाम को रटते हैं? नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को स्वाभाविक याद करते, हम उनके बारे में चिंतन करते, हम उनकी स्मृति में रहते हैं। परमात्मा की याद के लिए हमें ऐसी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारे ज्ञानी भक्तों ने भी हमें स्पष्ट कहा है, ये कबीर जी के महावाक्य हैं कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल। इसलिए कबीर जी ने सजेस्ट किया है, हाथ के मण के छोड़कर मन का फेर। तो हाथ से मन के फेरने की बात नहीं, मन रूपी मन के को फेरने की आवश्यकता है। तो जब भी हम परमात्मा को याद करने बैठे, हमें मनोस्थिति बदलने की आवश्यकता है। जो मन बहिर्मुखी बन गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, संसाराभिमुख बन गया है, हमें मन को अंतर्मुखी बनाना है, मन की स्थिति सोल कॉन्शियस बनानी है, मन परमात्मा भिमुख करना है। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात है, कोई माला के मणके फेरने की बात नहीं। इसलिए इस योग अभ्यास में कोई शब्द मंत्र भी नहीं है। भक्ति में हम गुरुओं से मंत्र लेते हैं और फिर वो मंत्र रटते रहते। कई बार हमने देखा है कि लोग मंत्र रटते हैं पर उसके अर्थ को भी नहीं समझते, केवल शब्द मंत्र रिपीट करने का क्या मतलब। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं हमें मंत्र के अर्थ को आचरण में धारण करना है, न कि केवल शब्द मंत्र रिपीट करते रहना। मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना। अब भक्ति में हम रटते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हम बहुत भावना से दो हाथ से शिव को नमन भी करते हैं, लेकिन अब आप अपने आप को चेक करिए कि मुख से ओम नमो शिवाय बोलते रहते हैं, दो हाथ से शिव को नमन भी करते हैं, हम ये शिष्टाचार निभाते हैं, लेकिन फिर क्या सारा दिन हम उस शिव परमात्मा की आज्ञा पर चलते हैं? आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको पांव लगता है, नमन करता है, गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन फिर सारा दिन आपकी एक भी बात मानता नहीं है, तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि भाई ये बाह्याचार करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो तुम कर, मेरी बातों को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो, वो तुम्हारा सच्चा प्यार है। तो परमात्मा के प्रति भी अगर हमें सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, ईश्वर के प्रति सचमुच हम समर्पण है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले, हम उनके ज्ञान को, गुणों को जीवन में धारण करें, हम परमात्मा की श्रीमत पर चले, वो हमारा सच्चा प्यार। इसलिए राजयोग में हम यही सिखाते हैं कि जो ईश्वर के प्रेम मंत्र में मुग्ध है उसे शब्द मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है योग में कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति हमें रटना है, यहाँ एक दो को ओम शांति ओम शांति ओम शांति सिर्फ कहने की बात नहीं, कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं, हमें ओम शांति बनना है, हमें अपनी शांत आत्मा स्थिति बनानी है, सिर्फ वो शब्द बोलना या कहना नहीं। इसलिए इसमें कोई मंत्र नहीं है, ना ही इसमें कुछ गाना बजाना या आवाज भी नहीं करना। हम भक्ति में जोर जोर से माइक लगाकर रात रात आवाज करते, लेकिन सत्यता ये है परमात्मा को मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते, वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर का आवाज पहुंचता है, दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। ये मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता। इसलिए योग अभ्यास के समय हम साइलेंस में बैठते हैं, अंतर्मुखी बनकर दिल के सच्चे प्यार से परमात्मा को याद करते हैं। आरती शब्द ओरिजिनली आर्त वाणी है, आर्त वाणी अंतर की वाणी से परमात्मा को याद करना है। हमें मन ही मन प्यार से परमात्मा को याद करना है, हमें बाह्य मुख से कोई आवाज नहीं करना। तो देखिए, राजयोग में कोई भी न शारीरिक क्रिया है न औपचारिक क्रिया है। अब भाई बहनें पूछते हैं, हमें योग किससे लगाना है? हम मन कहाँ एकाग्र करें? क्या हम सामने मूर्ति रखें, फोटो रखें, चित्र रखें, हम दीवा जलाएं, बिंदु पर मन लगाएं? हमें योग कहाँ लगाना है? पर अब मैं आप सभी भाई बहनों को ही कहूंगी, अब आप खुद विवेक से बताइए हमें योग कहाँ लगाना है। अब आप सबकी बुद्धि में भी स्पष्ट है कि आप स्वयं कौन है, परमात्मा कौन है। अब आप सिर्फ भक्त आत्मा नहीं है, अब आप सभी भी ज्ञानी तो आत्माएं। अब आप खुद विवेक से बताइए हमें योग कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है? हाँ, हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग लगाना। ये तो भक्ति में हम भगवान को नहीं जानते थे। बेशक हम भगवान को मानते थे, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। तो हमने अपनी अपनी भावना अनुसार, हरेक ने अपने अपने इष्ट के चित्र मूर्ति फोटो रखे, लेकिन अब आपको ज्ञान स्पष्ट है। कल सुबह प्रथम लेसन में आपको स्वयं का सही परिचय मिला कि मैं एक चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा आत्मा। और कल शाम को दूसरा आपका लेसन हुआ पिता परमात्मा का सही परिचय आपने प्राप्त कर लिया कि परमात्मा भी एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर है, हमें योग डायरेक्ट उस परम पिता परमात्मा शिव से लगाना है। अब आपको स्पष्ट है कि कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते। इसलिए आपको अब स्पष्ट है कि जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, वो महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, चाहे वो इस्लाम के अब्राहम हैं, हजरत मूसा हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, मोहम्मद पैगंबर हैं, गुरु नानक जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, शंकराचार्य जी हैं, अशो जरथुस्त हैं, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते रहे हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राधे कृष्ण है, श्री राम सीता है, अम्बा दुर्गा सरस्वती है, श्री गणेश हनुमान महाकाली है, जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वो देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक ही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप कल्याणकारी शिव पिता है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगा। और परमात्मा तो है ही निराकार, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनको हमारे जैसा शारीरिक आकार ही नहीं है, इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है ना। परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है, हमें उनको जानना है, समझना है। इसलिए भक्ति में भी हम कहते हैं कि हम इन चर्म चक्षुओं से परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं, मन की आंख से विजुअलाइज कर सकते हैं। इसलिए राजयोग में कोई मूर्ति चित्र फोटो की आवश्यकता नहीं। देखिए अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इस हॉल के अंदर सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, क्या किया, मन की आंख से विजुअलाइज किया ना, ज्ञान नेत्र से विजुअलाइज किया कि सूर्य आकाश में वो प्रकाशमान गोला है जो हमें नित्य रोशनी और ऊर्जा देता है। ये प्रकृति जगत का सूर्य है, परमात्मा ज्ञान सूर्य है, हमें मन की आंख से उस ज्योति स्वरूप को विजुअलाइज करना है और बुद्धि पूर्वक समझ पूर्वक हमें उसे याद करना है। इसलिए भाइयों और बहनों, यहाँ जो भी चित्र आप देखते हैं, हमारे म्यूजियम में भी ज्ञान के चित्र देखते हैं, आप लोगों में से कई हमारे सेवा केंद्रों पर भी गए होंगे, हमारे सेंटर्स में भी ज्ञान के अनेक चित्र लगे हुए हैं, वो ज्ञान समझाने के लिए। हमें उन चित्रों से योग नहीं लगाना, वो ज्ञान समझाने के लिए। और ये तो आप सभी भी मानेंगे कि हम अपने घर में, ऑफिस में जैसे चित्र लगाएंगे, ऐसा ही हमारा चरित्र बनेगा। अगर आप कोई क्रिकेटर के, कोई एक्टर के कोई भी चित्र लगाएंगे तो वही प्रेरणा पाएंगे, वही बनना सीखेंगे। अगर ज्ञान के चित्र लगे हुए होंगे तो हमें ज्ञान की बातें बुद्धि में याद आएगी, हम सेंसिबल समझदार बन सकेंगे। इसलिए हम शरीर से यहाँ बैठते हैं, मन और बुद्धि से अपने असली घर परम धाम में जाते हैं, ज्ञान नेत्र से उस परम ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को देखते हैं और बुद्धि से हम उनके याद स्मृति में रहते हैं, उसे योग कहा जाता है। तो ये है प्रैक्टिकल राजयोग की विधि, राजयोग इतना सहज और ज्ञान युक्त है, हर कोई योगी बन सकता है। अक्सर जब भी हम भाई बहनों को ये संदेश देते हैं, भगवान का जो आदेश है वो जब हम बताते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर भाई बहने हमें ये जवाब देते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम योगी कैसे हो सकते हैं। योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, इसलिए लोग ये सोच लेते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे, रिटायर्ड होंगे बहन जी, फिर हम रोज योग करने आएंगे। लेकिन भाई बहने, राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। प्रवृत्ति को पवित्र श्रेष्ठ बनाने के लिए योग है। हमें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, हमें कोई जिम्मेवारियां नहीं छोड़नी है, हमें क्या छोड़ना है? राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया को नहीं छोड़ना है, देहभान को छोड़ना है। हमें बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, हमें न स्थान बदलना है न ड्रेस बदलना है। देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है। हमें देहभान को बदलने की आवश्यकता है, सोल कॉन्शियस बनने की आवश्यकता। इसलिए कोई भगवे पहनने की या सफेद ड्रेस पहनने की बात नहीं है। भक्ति में अक्सर जो भी योगी हुए, तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए, इसलिए गृहस्थी भाई बहने सोचते हैं कि हम तो सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन राजयोग में हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें देहभान को मिटाने की आवश्यकता। कोई भगवा पहन लेने से योगी नहीं हो जाता है, कोई सफेद पहन लेने से योगी नहीं हो जाता है। ये हमारा ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, होता है कि नहीं? होता है ना? ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए फुल टाइम हम ये यूनिफॉर्म पहनते। पर केवल सफेद पहनने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। बेशक योगी को सफेद कपड़े पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। इसलिए राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। हमें इसमें सिर्फ नमन, वंदन, गायन, पूजन, दर्शन करके खुश होने की बात नहीं। राजयोग का लक्ष्य पुजारी से पूज्य बनना है, विकारी से निर्विकारी बनना है, भिखारी से अधिकारी बनना है। इसलिए इस योग अभ्यास में हमें भगवान को पुकारना नहीं है। आप देखिए, परमात्मा को याद करने की विभिन्न उपासना पद्धतियों में कोई भगवान को जोर जोर से पुकारते हैं। बताया ना मैंने, माइक लगाकर हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, अल्लाहु अकबर, हे भगवान, ओ गॉड, ऐसा पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं। बताया ना, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। कई लोग भगवान को याद करने में भगवान से मांगते रहते हैं। कहते हैं हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या करते रहते हैं? क्या करते हैं? हाँ, मांगते रहते हैं, हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हाँ, हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। हमें मांगना नहीं है। राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं है। क्यों नहीं मांगना है बताइए? क्यों नहीं मांगना है? हम भगवान के बच्चे हैं, हम वारिस हैं, हमारा बर्थ राइट है भगवान से प्राप्त करना, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। क्या करने की आवश्यकता है? हमें भगवान का लायक बच्चा बनने की आवश्यकता है। लायक बच्चे को, सपूत को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते हैं। देते हैं कि नहीं? लायक बच्चे के लिए माँ बाप कहते हैं ना, पेट से निकाल के भी देते, माना खुद खाएंगे पिएंगे नहीं, बच्चों के लिए करते। तो परमात्मा से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें योग्य लायक बच्चा बनने की आवश्यकता। हम गाते हैं, कहते हैं परमात्मा के लिए, त्वमेव माता च पिता त्वम, तुम मात पिता हम बालक तेरे। पर अपने आप से पूछिए, क्या हम स्वयं को भगवान का लायक बच्चा, ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हम हैं? है हम? हमें योग्य बनने की जरूरत है। उनकी याद से ही प्राप्ति है। आप संकल्प करेंगे और प्राप्ति है, मांगने की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए राजयोग में तीसरी बात हमें प्रार्थना विनती करने की भी जरूरत नहीं। भक्ति में हम बड़े दीन हीन लाचार होकर भगवान से विनती करते रहते हैं। राजयोग में हमें विनती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हमें विनती करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही दाता है। वो तो दे ही रहा है, वो सदा दाता है, वो सागर है, भंडार है, वो दयालु है, कृपालु है, वो सदा दे ही रहा है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें रिक्वेस्ट तो उनको करनी पड़े ना जो ना देता हो। जो दे ही रहा है उससे प्रार्थना करना वो तो उनका इंसल्ट करना है ना। इसलिए अब हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि परमात्मा दाता है, दे रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? अब स्वचिंतन करिए, स्वदर्शन करिए कि परमात्मा दाता है, दे ही रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा भगवान से योग नहीं है। योग का अर्थ है कनेक्शन। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा भगवान से कोई संपर्क नहीं रहा। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको अपने घर में बिजली चाहिए, आपको क्या करना होगा? कनेक्शन जोड़ना होगा न? परमात्मा लाइट हाउस, माइट हाउस, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, ऑलमाइटी है। मुझे उनसे कनेक्ट होने की आवश्यकता है। मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, इलेक्ट्रिक पावर से कनेक्ट करते हैं, बैटरी रिचार्ज होती है ना। परमात्मा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, मन और बुद्धि की तार उनसे जोड़ने की जरूरत है। अब अपने आप में आप देखिए, हमने मन और बुद्धि कहाँ जोड़कर रखे हैं? हाँ, मन और बुद्धि का सूक्ष्म अटैचमेंट हमने कहाँ करके रखा है? हम तो लोगों से, व्यक्तियों से, संबंधों से, पैसों से, साधनों से, बातों से, परिस्थितियों से मन और बुद्धि को अटैच करके बैठे हैं और फिर भगवान से मांगते रहते हैं। हमें मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। देखने में लगेगा कि आप भगवान को याद करते हैं, पर सूक्ष्म में आप चेक करिए, हम हाथ बिजी कर देते हैं आरती उतारने में, तालियां बजाने में, हम मुख बिजी कर देते हैं आरती गाने में, भजन गाने में, पर मन और बुद्धि कहाँ है? मन और बुद्धि परमात्मा से अटैच नहीं है तो आत्मा में शक्ति कहाँ से आएगी? हमें परमात्मा की याद से शांति, सुख, आनंद, प्रेम का अनुभव कैसे होगा? इसलिए खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उसे योग कहते हैं। दूसरी बात, योग का अर्थ है रिलेशन, संबंध जोड़ना। चित्र में देखिए, एक बच्चा शारीरिक पिता को याद करता है, उसे अपने माँ बाप को याद करने के लिए कोई आसन प्राणायाम नहीं करना पड़ता, कोई माला मंत्र रटना नहीं पड़ता। बच्चे का माँ बाप से संबंध है, उनसे प्यार है, ऑटोमेटिक बच्चे को माँ बाप की याद आती है। हमें भगवान से संबंध जोड़ने की आवश्यकता। आपके पास लाखों रुपए हैं पर मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है तो मुझे कुछ प्राप्ति होगी? होगी नहीं, प्राप्ति संबंध से होती। देखो, बच्चा पैदा होता है, वारिस बन जाता है, संबंध से हम प्राप्ति करते हैं। हमारा भगवान से संबंध नहीं रहा, इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि हमें मुख से संबंधों का वर्णन करने की जरूरत नहीं। भक्ति में हम वर्णन करते हैं, कौन सा श्लोक बोलते हैं, कौन सा श्लोक बोलते हैं जिसमें भगवान के साथ सर्व संबंधों का वर्णन है, कौन सा श्लोक बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भक्ति में हम भगवान के लिए संबंधों का वर्णन करते हैं। राजयोग में हम कहते हैं कि हमें मुख से वर्णन नहीं करना है। आप खुद सोचिए, क्या आपके बच्चे रोज आपके घर में बैठकर आपके सामने वर्णन करते हैं क्या कि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो? ऐसे आपके बच्चे रोज आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या? गाते हैं? नहीं, बच्चे को परख है, निश्चय है कि यही मेरे माँ बाप है। सैकड़ों नर नारियों में एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप को परख लेता है। हमें ज्ञान चाहिए, निश्चय चाहिए कि परमात्मा ही मेरे असली माता पिता है। ये शरीर के माँ बाप, भाई बहन, मित्र संबंधी हैं, ये एक जन्म के संबंधी है। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे, नए शरीर लेंगे, नए माँ बाप मिलेंगे। तो ये देह के दुनियावी संबंध हैं, मुझ आत्मा के असली और अविनाशी माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी परमात्मा है। तो विवेक से परमात्मा को पहचान कर जीवन के सर्व संबंध उनसे जोड़ना, स्वीकार करना, निश्चयात्मक बुद्धि बनना, उसे ही योग कहते। हमें ऑटोमेटिक याद आएगी, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरी बात, परमात्मा से प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, उसका तीसरा कारण, जैसे बाहर जोर से बारिश हो रही है लेकिन आपने अपना लोटा उल्टा रखा है तो भरेगा? हाँ, नहीं भरेगा ना। परमात्मा दाता है, सागर है, दयालु है, कृपालु है, कल्याणकारी है। और हम सब कहते हैं परमात्मा देता है तो कितना देता है? छप्पर फाड़ के देता है। पर हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा भगवान से प्यार नहीं है, हमारी उनसे बुद्धि विपरीत हो गई है, हमारी उनसे प्रीत बुद्धि नहीं है, इसलिए प्राप्ति नहीं। जितना भगवान से दिल का जिगरी सच्चा प्यार, उतनी प्राप्ति है, उतनी एकाग्रता है, मेहनत की बात ही नहीं। इसलिए हमें यहाँ सिखाया जाता है कि जहाँ परमात्मा से मोहब्बत है वहाँ कोई मेहनत नहीं है। ये सारी व्यर्थ की मेहनत इसलिए हम करते हैं, हमारा भगवान से दिल का सच्चा प्यार नहीं। आप चेक करिए अपने आप को, हम भगवान को याद करते हैं, हमारे में से कई सिर्फ नियम से याद करते हैं। हमारा नियम है, कहते हैं बस हम सुबह शाम 10 मिनट आधा घंटा नियम से आरती पूजा कर लेते हैं, धूप दीप कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक हूँ। कई तो कहते हैं हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, मेरी सास भी करती थी, मैं भी करती हूँ। तो ये नेमिनाथ बनकर सिर्फ एक नियम निभा लेते हैं, समझ भी नहीं, प्यार भी नहीं। कई स्वार्थ से भगवान को याद करते हैं, मतलब से याद करते हैं, भगवान से कुछ चाहिए इसलिए याद करते हैं, प्यार से याद नहीं करते। और अगर मुझे जो चाहिए वो भगवान से ना मिलता हो तो हम याद करने भी तैयार नहीं है। कोई भय से भगवान को याद करते हैं कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे धंधे में कोई विघ्न ना आ जाए, मेरे पाप फूट ना जाए, भय से भगवान को याद करते। गलत करते हैं और फिर भगवान को कहते हैं मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये प्रसाद करूंगा, ये कथा करूंगा, ये यात्रा करूंगा। आप सोचिए हमने भगवान को क्या समझ लिया है। हमें प्यार से याद करना, दिल के सच्चे प्यार से याद करें, हम उसी क्षण एकाग्र हो जाते। इसलिए राजयोग में कोई क्रियाकांड नहीं, कोई साधन मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, ये बिल्कुल सहज सत्य योग है। कर्म करते भी हम योगी बन सकते हैं। इसलिए लास्ट बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि योग अभ्यास के समय राजयोग में आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर भगवान को याद करते समय लोग आंख बंद करके बैठते हैं। लोग कहते हैं हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, मैंने देखा लोग वहां भी आंख बंद करके खड़े रहते हैं। स्कूलों में प्रार्थना कराते हैं, बच्चों को जबरदस्ती आंख बंद कराकर सिर झुका करके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, हमारी मान्यता गलत है। हम ये समझते हैं कि आंखें खुली होंगी, हमें ये सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए लोग आंख बंद करके बैठते। पर आप अपने आप को चेक करिए कि आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है, क्या रिजल्ट है? हाँ, भटकता है ना? देखो मेरी आंखें खुली है, मुझे ये चार दीवार के बीच में जो है वो दिखाई देता है, लेकिन आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती है ना, जिंदे मरे सब दिखाई देते। फिजिकल आंख के लिए लिमिटेशन है, पर मन की आंख के लिए कोई लिमिटेशन है? वो तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस सारी दुनिया को देखता है। इसलिए क्यों नहीं आंखें खुली रखें, मन परमात्मा के प्रति फोकस करें। ये बाह्य आंखें हम नेचुरल खुली रखें, मन की आंख परमात्मा के प्रति फोकस करें, उनके याद प्यार में एकाग्र हो जाएं, उसे योग कहते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा हमारे सेवा केंद्रों में भी, जब भी हम सामूहिक योग अभ्यास करने बैठते हैं, सामने योग अभ्यास कराने कोई बैठते हैं, जैसे आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी, ऐसे कोई ना कोई भाई बहने योग अभ्यास कराने बैठते हैं। जैसे एक फिजिकल ड्रिल मास्टर स्टेज पर खुद एक्सरसाइज करता है और उसको देखकर ऑडियंस फॉलो करती है, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। हम परमात्मा याद में बैठते हैं, हमें देखकर भाई बहने भी परमात्मा की याद में स्थित होते हैं। हमेशा कोई योग अभ्यास कराने बैठ नहीं सकते, इसलिए आपने देखा होगा हमारे मेडिटेशन रूम में, हमारे मेडिटेशन हॉल में ब्रह्मा बाबा का चित्र होता है, ब्रह्मा बाबा की ट्रांसलाइट होती है, जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में बैठते हैं, उनको देखकर हमें भी शिव बाबा को याद करना है। हमें योग कोई ब्रह्मा से या ब्रह्मा कुमारी से नहीं लगाना है, हमें योग डायरेक्ट शिव बाबा से लगाना। तो ये है राजयोग की विधि। मैं समझती हूँ अब आप सबको स्पष्ट है हमें प्रैक्टिकली परमात्मा को कैसे याद करना है। आज का अभ्यास हम सभी विधि पूर्वक पद्धति पूर्वक करेंगे, इसलिए सभी व्यवस्थित अलर्ट होकर बैठ जाए। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग गोद में हाथ में लेकर न बैठें, साइड में रख दीजिए। एक दो से अलग अलग होकर बैठें, टच करके नहीं बैठें। काफी कुर्सियां हैं, काफी स्थान है, खुले होकर बैठें, टच करके न बैठें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। आपको ज्ञान है मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है। भल हम इन आँखों से शरीर देखने में आता है, लेकिन शरीर को देखते हुए भी आत्मा को देखना है, एक दो को आत्मा समझना है। कोई भी आंख बंद कर सिर झुकाकर के नहीं बैठेंगे, परमात्मा को याद करना श्रेष्ठ कार्य है। बहुत ही खुशी से और गर्व से हमें अपने अविनाशी पिता शिव बाबा को याद करना है। हम साइलेंस में बैठेंगे, हमें मन ही मन प्यार से कैसे शिव बाबा को याद करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनके बारे में मनन चिंतन करना है, वो मैं कमेंट्री के रूप में सजेस्ट करती जाऊंगी। आपको मुख से बोलना नहीं है, पर जो विचार मैं आपको दूं, वो मन ही मन रिवाइज करना है, उसके अर्थ को रियलाइज करना है, उस अनुभव में स्थित होना है। हरेक अपनी आत्मा स्थिति में स्थित हो जाए। मैं एक आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा एक अविनाशी चैतन्य शक्ति, यह शरीर केवल एक साधन है जिसके द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मैं आत्मा शरीर धारण कर इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। ये मेरा घर नहीं है, मुझ आत्मा का असली असली घर शांति धाम है। जो इस दुनिया से दूर है, पांच तत्वों से पार है, जहां अखंड लाल ज्योति तत्व ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, मैं उस ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। मुझे स्पष्ट है पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मैं मन की आंख से ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देख रहे हो। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूँ। भक्ति में दर दर भटकती रही हूँ। अब आपके सत्य परिचय को पाकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। अब मेरे मन का अंधकार समाप्त हो चुका है। मुझे स्पष्ट है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आपके सद्ज्ञान को पाकर मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। मेरे प्यारे शिव पिता, आपको पाकर अब मेरा श्रेष्ठ लक्ष्य बन गया है। अब मैं यही चाहती हूँ कि जो सत्य ज्ञान आप हमें देते हैं वो संपूर्ण सत्य ज्ञान मुझे जीवन में धारण करना है। मेरे कल्याणकारी शिव बाबा, जिन गुणों के आप सागर हैं, आपके सर्व ईश्वरीय गुण मुझे अपने जीवन में भी धारण करने हैं। जिन शक्तियों के आप अखुट भंडार है वो सभी रूहानी शक्तियां मुझे भी स्वयं में धारण करनी है। मेरे प्यारे बाबा, अब मैं इसी स्मृति और अनुभूति में रहूंगी कि आप शांति के सागर हैं, आपकी संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप हो। प्यार के सागर मीठे बाबा, आपकी संतान में आत्मा भी प्रेम स्वरूप मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन शिव बाबा, मैं आपसे योग लगाती हूँ। मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। आप मेरे शिव हैं, मैं आपकी शिव शक्ति हूँ। मैं आपको याद करती हूँ, शुद्ध पवित्र बनती जाती हूँ। मुझे यही खुशी और नशा है कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध स्वरूप हूँ। शांति। इस प्रकार रोज सुबह शाम आप लक्ष्य बना लें बाबा का सत्य ज्ञान सुनना है, और रोज साइलेंस में बैठकर बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करना है। हम अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकेंगे, अपनी कलाओं को दिव्य बना सकेंगे। ओम शांति।